नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने को समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर बताया। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा, भूमि सर्वे के लिए स्वघोषणा के साथ जमीन के सभी कागजात तत्काल देना जरूरी नहीं है, बाद में भी जमा किए जा सकते हैं दस्तावेज। बढ़ती गर्मी को देखते हुए सभी सरकारी विद्यालयों के संचालन समय में परिवर्तन किया गया। 7 अप्रैल से 1 जून तक विद्यालयों का संचालन सुबह 6:30 से दोपहर 12:30 तक होगा। और हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता मनोज कुमार का निधन, कल होगा अंतिम संस्कार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक पारित होना सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में संसदीय समिति के विचार विमर्श में भाग लेने वाले सभी सांसदों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने उन लोगों को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने संसदीय समिति को अपने बहुमूल्य सुझाव भेजे। श्री मोदी ने कहा कि वक्फ प्रणाली में दशकों से पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव रहा, जिससे निर्धन मुस्लिमों, महिलाओं और पसमांदा मुस्लिमों के हितों को नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद से विधेयक पारित होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों का हित सुरक्षित होगा। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य अधिक सुदृढ़ और समावेशी भारत का निर्माण करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद द्वारा वक्फ विधेयक 2025 को मंजूरी दिए जाने को ऐतिहासिक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इससे वर्षों से चले आ रहे अन्याय और भ्रष्टाचार का अंत हुआ है और न्याय तथा समानता का युग शुरू हुआ है। श्री शाह ने कहा कि इस विधेयक से वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियां अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और न्याय संगत होंगी। उन्होंने कहा कि इससे मुस्लिम समुदाय के गरीबों, महिलाओं और बच्चों को निश्चित रूप से लाभ होगा। गृह मंत्री ने इस महत्वपूर्ण विधेयक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू को बधाई दी। उन्होंने इसका समर्थन करने वाले सभी दलों और सांसदों का भी आभार व्यक्त किया। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दायर की गई है। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने यह याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि विधेयक पूरी तरह असंवैधानिक है। इधर कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगा और इस बिल को जल्द से जल्द खारिज किया जाएगा।
पार्लियामेंट में हमने और जितने भी कांग्रेस के तरफ से थे या ऑपोजिशन के तरफ से थे, सबने कहा यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये रिलीजियस बॉडी है। जिस तरह आप गैर मुस्लिम्स में हिंदू भाई बहन हो या सिख भाई बहन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सबको आज़ादी दे रहे हैं, तो हमारा आज़ादी कैसे छीन सकते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेफ गार्ड है हमारे लिए, तो ये वायोलेशन कैसे आप कर सकते? तो हम लोग ने चैलेंज किया है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे चिंतन करेगी और मुझे यकीन है जल्द से जल्द इसको खारिज किया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पूरी तरह से संविधान के अनुसार पारित हुआ है। इस विधेयक को अदालत में चुनौती देने के कांग्रेस नेता के बयान पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि किसी को अदालत में जाने से कोई नहीं रोक रहा है।
कांग्रेस के कुछ कानूनविद द्वारा कहा जा रहा है कि यह संवैधानिक है, हम कोर्ट जाएंगे, तो जाएं कोर्ट, कोई रोक तो है नहीं। संविधान के छात्र के रूप में मैं प्रामाणिकता से बोलना चाहूंगा, ये जो वक्फ संशोधन बिल है ये बिल्कुल संविधान सम्मत है। संविधान के मौलिक अधिकार की धारा 15 में इस बात का प्रावधान है कि महिलाओं के विकास के लिए, पिछड़े समाज के विकास के लिए सरकार कानून बना सकती है, तो वही तो ये हुआ है। खवातीनों के लिए, विधवाओं के लिए, बेवाओं के लिए वक्फ में जगह मिले उनको, और पसमंदा मुसलमान, पिछड़े मुसलमान, उनका सम्मान मिले।
वक्फ बिल को समर्थन देने के बाद जदयू से कई मुस्लिम नेताओं के इस्तीफा देने पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि नेताओं का कोई जनाधार नहीं है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने वाले कासिम अंसारी ने पिछले विधानसभा चुनाव में AIMIM के टिकट पर ढाका विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और उन्हें मात्र 499 वोट मिले थे।
आरजेडी को कुछ पता है कौन छोड़ के गया है? कौन गया है जिसका बहुत भारी प्रचार कर रहा है और आपके बहुत भारी नेता हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। मालूम है 2020 के विधानसभा के चुनाव में कौन पार्टी से चुनाव लड़े थे? पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे ढाका विधानसभा से। 499 वोट आया था। फिर लालू जी 2010 में क्या भाषण दिए थे उस पर तो बोले आरजेडी के लोग कि बड़ा कड़ा कानून बनाने का जरूरत है, सब लूट लिया डाकबंगला चौक से लेके सब। कौन दिया था भाषण? हम दिए थे।
उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने वक्फ बिल के पारित होने को ऐतिहासिक बताया है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिन्हा ने कहा कि इस बिल से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी।
ये जमींदार लोग जो जमीन खा गए थे, बना करके रखे हुए थे, बड़े बड़े मॉल हॉल खेल खेल रहे थे, ये सब बेचैन है। अरे ये जमीन जो आएगा वो तो गरीबों को ही जाएगा। मुस्लिम समाज में जितनी गरीबी है, उस गरीब की चिंता कभी आपने देखा है कि उस समाज के जो आका है माफियागिरी करने वाले, उन्होंने उठाया है, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। राजद कांग्रेस उसका सौदा करता है और ब्लैकमेल करता है। ये मानसिकता अब बदलने की जरूरत।
राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पूरी तरह असंवैधानिक और धर्म निरपेक्षता की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार दोनों सदनों में बहुमत रहने के कारण इस बिल को पास कराने में सफल हुई। सरकार ने इस मामले में कभी भी संजीदगी नहीं दिखाई।
सत्ता पक्ष के साथ दिक्कत क्या है ना, जो कि मैंने अपनी बातचीत में भी कही कि बहुमत आने का मतलब नहीं है कि हर चीज का ज्ञान आप ही को है। एक संजीदगी, एक बड़ा हृदय दिखा करके आप पूरे डॉग विसिल को आधार बना करके जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो कतई उचित नहीं था। लेकिन हम ये कहेंगे अभी भी लोगों के अंदर जो मन में असंतुष्टि है नागरिकों को, अगर उसको दूर नहीं किया तो इसका हश्र फॉर्म लॉज की तरह।
जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के धर्मनिरपेक्ष विचारधारा पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते हैं। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों की भलाई के लिए कई काम किए हैं।
मुसलमानों को इस बात का एहसास है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने हमको सुरक्षा दिया, संरक्षण दिया, मुसलमान पंचायती राज का हिस्सेदारी हो जाता। कोई पसमंदा मुसलमानों के बारे में विचार करता था? परित्यक्ता नारी के बारे में कोई विचार करता था? कब्रिस्तान की घेराबंदी का विचार करता था?
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा है कि भूमि सर्वे के लिए स्व घोषणा के साथ जमीन के सभी कागजात देना जरूरी नहीं है। जमीन के जितने कागजात रैयत के पास उपलब्ध हैं, वे तत्काल उतने कागजात ही जमा कर सकते हैं। बाकी के कागजात किस्तवार और खानापूरी के समय जमा करना होगा। मंत्री ने बताया कि 31 मार्च तक 1,15,00,000 स्वघोषणा प्राप्त हुआ है। हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता मनोज कुमार का आज निधन हो गया। वे 87 साल के थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार कल सुबह मुंबई के विले पार्ले में होगा। मनोज कुमार ने भारतीय दर्शकों को कई यादगार फिल्में दी हैं, जिनमें उपकार, रोटी, कपड़ा और मकान, क्रांति, शोर तथा पूरब और पश्चिम प्रमुख हैं। एक श्रद्धांजलि।
24 जुलाई 1937 को अबोटाबाद में हरिकिशन गोस्वामी के रूप में जन्मे मनोज कुमार ने हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। 1965 का वर्ष उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ जब उन्होंने शहीद भगत सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म शहीद में मुख्य किरदार निभाया।
ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे।
इसके बाद उनकी फिल्मों में देशभक्ति की गहरी भावना झलकने लगी जिससे वे भारतीय दर्शकों के दिलों में बस गए और भारत कुमार के नाम से प्रसिद्ध हो गए।
सेनापति, जब जन्म देने वाली माँ पास ना हो ना, तब ये धरती माँ आंसू तो आंसू खून का बहना भी बंद कर देती है। अगर इस मिट्टी से फायदा पहुँचे ना तो इसका कर चुका देना।
उपकार और पूरब और पश्चिम जैसी उनकी प्रसिद्ध फिल्में राष्ट्रभक्ति और एकता की भावना को दर्शाती है।
तुम्हें वापस जाने का ख्याल कैसे आया? इंडिया से स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, पढ़कर यहीं रह जाते हैं, यहीं काम करते हैं।
जो लोग यहाँ आके बस जाते हैं वो ये क्यों नहीं सोचते कि उन पे सबसे पहला अधिकार उस देश का है जिसने पाल पोस के उन्हें बड़ा किया।
मनोज कुमार ने लगभग 4 दशकों के अपने लंबे करियर में भारतीय सिनेमा को अपार योगदान दिया और उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा 7 फिल्म फेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने 1992 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। उनकी विरासत को और मजबूत करते हुए 2015 में उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाड़के पुरस्कार से नवाजा गया।
प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।
अंकित आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव समेत फिल्म, कला और राजनीति जगत से जुड़े लोगों ने मनोज कुमार के निधन पर गहरा दुख जताया है। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार 38.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ खगड़िया सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
अगले 2 दिनों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले 72 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात अधिकतम तापमान में कमी की संभावना है। तत्पश्चात न्यूनतम तापमान में वृद्धि की संभावना है।
शिक्षा विभाग ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए सभी सरकारी विद्यालयों के संचालन समय में परिवर्तन किया है। 7 अप्रैल से 1 जून तक प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों का संचालन सुबह 6:30 से दोपहर 12:30 तक होगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली से दरभंगा के लिए एक नई उड़ान सेवा की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि इस नई सेवा से प्रदेश में पर्यटन और आर्थिक विकास को बल मिलेगा। इस अवसर पर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा और दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी उपस्थित थे। उदयमान सूर्य को अर्घ अर्पित करने के साथ ही चैती छठ महापर्व का 4 दिवसीय अनुष्ठान आज संपन्न हो गया। लोगों ने आज सुबह गंगा, कोसी, गंडक, बागमती और सोन समेत विभिन्न नदी घाटों, तालाबों, जलाशयों और अस्थायी घाटों पर भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने को समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर बताया। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा, भूमि सर्वे के लिए स्व घोषणा के साथ जमीन के सभी कागजात तत्काल देना जरूरी नहीं है, बाद में भी जमा किए जा सकते हैं दस्तावेज। बढ़ती गर्मी को देखते हुए सभी सरकारी विद्यालयों के संचालन समय में परिवर्तन किया गया। 7 अप्रैल से 1 जून तक विद्यालयों का संचालन सुबह 6:30 से दोपहर 12:30 तक होगा। और हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता मनोज कुमार का निधन, कल होगा अंतिम संस्कार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।